के गान में पे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। कर्ता के नाम अधिकार चल रहा है और उसमें एक प्रकरण समाप्ति की ओर है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने उस प्रकरण की समाप्ति पर 6 कलश चढ़ाए हैं। अमृतचंद्राचार्य की ये विशेषता है कि जब उनकी बुद्धि हृदय पर हावी होती है तब वो गद्य लिखते हैं, और जब हृदय बुद्धि पर हावी हो जाता है तो उनके मुख से कविता फूट निकलती है। इसलिए आत्मख्याति टीका अकेले गद्य टीका नहीं है, उसमें 274 है, 278 कलश साथ में है, छंद हैं, और वे बहुत ही मार्मिक हैं। वो इतने मार्मिक हैं कि पांडे राजमल जी ने उन कलशों पर टीका लिखना आवश्यक समझा, मूल समय सार पर नहीं। और कविवर बनारसी दास को वो टीका पढ़ने को मिली तो उन्हें समय सार नहीं पढ़ के समय सार कलश पढ़ा, बाल गोदनी टीका पढ़ी, और नाटक समय सार उस बाल गोदनी टीका के आधार पर लिखा, ऐसा उन्होंने स्वयं प्रशस्ति में लिखा है। यानी वो कलश इतने आप में अपने महत्वपूर्ण हो गए कि वो स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में चल पड़े। कलश टीका वो आत्मख्याति में आने वाले कलशों की टीका का नाम है। ऐसी अध्यात्म तरंगिणी वो भी इन कलशों की ही टीका है। और अपन ने समय सार की गाथाओं का पद्यानुवाद तो किया ही है, उन कलशों का भी पद्यानुवाद किया है। गाथाओं से ज्यादा कठिन पद्यानुवाद कलशों का है, क्योंकि वो छंद, एक तो गाथा तो एक छंद में चली गई और एक छंद आपने चुन लिया और धड़ाधड़ चले जाओ आगे, और कलश में तो हर 4 कदम पर छंद बदल जाता है, और कभी श्लोक आता है, कभी एकदम मंदाक्रांत आ जाता है, कभी शार्दूल विकृत जैसा लंबा छंद आ जाता है। क्यों? 2 लाइन का, कभी 4 लाइन का, कभी 4 लाइन भी 8 लाइन के बराबर है। तो उनका पद्यानुवाद काफी कठिन है, लेकिन अत्यंत सरल भाषा में मैंने करने की कोशिश की है। तो इस तरह उस समय सार कलश पर 2 चीजें विद्यमान हैं अभी, एक बनारसी दास का नाटक समय सार और एक मेरा वो कलश पद्यानुवाद। दोनों में मूलभूत अंतर क्या है वो मैं आपके दिमाग में स्पष्ट कर दूं थोड़ा, इससे आपको फर्क आए और आपको दोनों ही के पढ़ने की प्रेरणा मिले। एक दूसरे के पूरक नहीं है, माने एक दूसरे को ये नहीं है कि एक दूसरे की जगह पढ़ लो तो काम चल जाएगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। बनारसी दास जी ने कलशों को सामने रखकर और ये हिंदी पद्यानुवाद नहीं किया, वो तो कलश टीका पढ़ते थे और जहां उनका मन रमा और वहीं वो एक दो छंद बना देते थे। तो जब जैसा मौका लगा तो मैं हम कविता बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, इन्हें क्रम से नहीं लिखे। और ऐसे बहुत कलश हैं कि जिनमें जो मूल कलश में बात ही नहीं है लेकिन कलश टीका में आई है, तो वो पूरी बात उसमें आ गई। क्या? जैसे कि मूल गाथा में तो ये है ही नहीं कि धोबी का उदाहरण, लेकिन वो टीका में आया था, वो टीका में से उन्होंने छंद बना दिया, ना तो कलश में है और ना गाथा में है, तो ना वो कलश का अनुवाद हुआ ना गाथा का हुआ, वो तो टीका का हुआ, और टीका का उसमें उन्होंने दे दिया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने ऐसा किया, और बाद में जब वो छंद बनते चले गए तो उनका संकलन करके एक व्यवस्थित व्यवस्था बैठाई, और बीच बीच में जहां उन्हें लगा कर ये छूट गए तो उनकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ दोहे, कुछ चौपाइयां करके उनकी धरती पूर्ति की है। तो वो इस तरह से बना हुआ ग्रंथ है और उनको ये महसूस हुआ कि अध्यात्म अध्यात्म की अकेली बात पढ़ने से आदमी भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए उसे थोड़ा गुणस्थानों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो उसने अंत में ये गुणस्थानाधिकार भी जोड़ दिया और फिर ये लगा कि गुणस्थानाधिकार से काम नहीं चलेगा, इसके आचरण सुधारने के लिए श्रावकाचार की भी चर्चा होनी चाहिए। तो गुणस्थान अधिकार में चौथे गुणस्थान और पांचवें गुणस्थान की चर्चा करते हुए उन्होंने श्रावकाचार भी उसमें लगा दिया। तो वो समय बनारसीदास का नाटक समय साल अकेला अध्यात्म का ग्रंथ नहीं है, वो करुणा नियोग का भी है, क्यों 14 गुणस्थान भी उसमें है और श्रावक का आता तो श्रावकाचार भी है। ये जो आप पढ़ते हो ओरा घोर वाराणस भोजन बहुबीजा अनुसंधान, ये 22 अवक्त वो समय सार के लिखे हैं और समय सार में भाई 22 अवक्तों का क्या लेना देना है? और ये जो कलश बद्धानुवाद है, ये एक एक कलश का उसकी पंक्ति पंक्ति को ध्यान में रखकर और अत्यंत सरल भाषा में उसका पूरा भाव व्यक्त करने की कोशिश की है। देखो पद्यानुवाद में ऐसा नहीं होता कि हम ले गए ऊपर लेन पे लेन के लेन का अनुवाद करते गए, ऐसा भी नहीं होता कि अभी बिल्कुल अपन उसको छोड़ करके और उसके भाव को अपन कर लें। पहले पूरी तरह इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है अंदर में और फिर उसे पद्य की भाषा में सरल भाषा में व्यक्त करना पड़ता है। तो नीचे की पंक्ति ऊपर, ऊपर की पंक्ति नीचे हो सकती है, ख्याल में आई ना? ये कह रहे थे ना हमने सुमत जी कि इनने शुरू में कर दिया वो चैतन्य गुणमय आत्मा, उसमें तो बाद में है, इन्हें शुरू में कर दिया तो ऐसा होता है ना, इसलिए होता है कि हमें तो आत्मा बताना है ना, अपोजिट से बताना कि चैतन्य गुणमय है और उस आत्मा में क्या क्या नहीं है। उन्हें गाथा बनाई तब उनको उसको छंद के अनुरोध से उनको ऐसा लगा, तो इसी एक पद्धति होती है। तो इन चार कलशों के माध्यम से ये पूरे प्रकरण का जो अपन अभी खत्म अपने चला रहे ना, कितने दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए ना, 11 तारीख से शुरू हुआ था, 18 तक हो चुके ना, 8 व्याख्यान हो चुके, 9वां है। जो प्रकरण आज तक कहा उसके निष्कर्ष के 6 कलश है। अब उन 6 कलशों में जो 5वां कलश है उसे देखो, उससे आपको ख्याल में आएगा ये कितनी महत्वपूर्ण बात इसमें कही है। देखो ये ना कौन सा है, पचवन महा पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है, यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुस्वार है, भूतार्थ नए के प्राण से यदि लय को यह प्राप्त हो तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंध हो। ये जो है ना पद्मनाथन आसंसारात एवं धावती, इसका पद्यानुवाद है। कमल जी आप बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, आपसे कहता हूँ क्या छूट गया इसमें पद्यानुवाद में, देखो देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे माथा मारो, ऊपर की गिलास तुम्हारे पास है ही नहीं है, किताब समय सार नहीं है, इसमें एक शब्द छूट गया, बोलो हेमचंद जी, यद्येक वारं विद्येत, यदि एक बार ये छूट जाए, नीचे में एक बार के लिए जगह नहीं थी है ना, तो इसमें इतना ही लिखा है, भूतार्थ नए के ग्रहण से यदि पिलय को यह प्राप्त हो, समझ गए ना, एक बार नहीं आया, नहीं क्या छूटा है, जितना हमें मालूम है उतना आपको नहीं पता लग सकता, आप दोनों को मिलान करके देखेंगे तो पता लगेगा क्या शब्द कोई इसमें एक नई भी बात आ गई वो भी हमें पता है, क्यों आ गई वो भी पता है, लेकिन अर्थ में कोई बात। तिलय को प्राप्त हो तो एक बार हो, बात तो एक ही है ना, मोह का नष्ट हो गया, भले ही एक बार हम शब्द छोड़ दिया। तो कितने मर्म की ये निष्कर्ष की का कलश है कि पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है, मैं पर का करता हूं ये अहंकार है, ये अत्यंत ही दुर्वार है, इसको निवारण करना अत्यंत कठिन है। यानी सबसे बड़ी समस्या कुंदकुंद के सामने, अमरचंद के सामने समय साल लिखते वक्त ये थी कि इस जीव में जो पर द्रव्य के प्रति जो कर्तृत्व भाव जमा हुआ है अंदर में, उसको हटाना बहुत कठिन काम है। इसलिए बार बार कर्ता कर्म अधिकार में, सर्वस्व ध्यान अधिकार में, बंद अधिकार में इस बात को वो बार बार लेके आते हैं, है ना। इस पंक्ति में उनकी दृष्टि में इस विषय का महत्व और कैसे मैं इसे दूर करूं, इस बात की तड़प और अंदर में उसको कथन करना हो नहीं पा रहा है काम, इसकी प्रतीति, और उसके लिए वो आपको कह रहे हैं भैया कि पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है। सच बोलो ईमानदारी से, हमारी समस्या क्या है? हमें धर्म करना है और धर्म करने के लिए हमें जो पुरुषार्थ करना है तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? यानी पहली बात तो है कि उसके लिए क्या करना है, ये तो बाद की बात है, लेकिन क्या करना, क्या करना है, क्यों? तो लोग कहेंगे कि संसार के चक्कर में फंसे हैं, स्त्री पुत्र के चक्कर में फंसे हैं, इनकी झंझट से बचना है। कुछ लोग ये कहेंगे कि इन सब का राग द्वेष छोड़ना है, इसकी झंझट से बचना है। और मुमुक्षु होंगे तो ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमको सबसे पहले मिथ्यात्व तो छोड़ना है, क्यों? क्योंकि वो बात तो होगी संयम जैसी कि घर बार को छोड़ दो, स्त्री पुत्र परिवार को छोड़ दो, उसको सारा जगत आजकल संयम मानता है। कल कभी गुरुदेव जी बोलते थे, आपने सुना होगा उनके मुख से, नहीं टेपों में सुनते हुए, कि जब हम गृहस्थी में थे, घर में थे, क्यों सुना क्या नहीं सुना? मैंने कहा था गुरुदेव से को आप कहाँ हैं यार, ज्यादा समझ में आया कि नहीं आया? अरे अभी भी ये चौथे गुणस्थान में है, गृहस्थों का ही गुणस्थान है, अभी आप कोई साधु थोड़े हो गए। कहा मैंने, ऐसा नहीं आपसे कह रहा हूँ, गुरुदेव से कहा, ये समय साल की साक्षी पूर्वक कह रहा हूँ। क्यों? गृहस्थी में थे का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो घर में धंधा पानी करते थे, समझ आसान रहते थे, वो गृहस्थ धर्म नहीं है। ये तो जब तक मुनि दशा नहीं आएगी तब तक एक गृहस्थी में ही है, क्योंकि चौथे और पांचवें गुणस्थान ग्रस्त धर्म के भेद हैं। 11 प्रतिमाएं ग्रस्त धर्म में ही आती हैं, समझ जी है? ऐसा भ्रम नहीं है कि मैं तो गृहस्थी में हूँ, समझ जी गृहस्थी से निकल गए। हेमन्ना जी आप तो निकल गए ना, इस धोखे में मत रहना। ये बाहर के कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है? तो उनकी समस्या ये है कि हम जैसे जैसे छोड़ देंगे ना तो संसार से पार हो जाएंगे, जिनने छोड़ दें ना उनकी जब लोग हो गए ना पार। क्यों? मैं कभी कभी अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ, दूसरों से कहने की तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, क्यों अभिनंदन जी है? कि जब यदि हम घर में रहते तो जिंदगी भर बाप दादों के मकान के दो कमरों से हमारा काम चल जाता, क्यों? अब हमने शादी नहीं की, घर में नहीं रहे, यदि बुढ़ापे में आते आते ये सोचते हैं कि बाल बच्चों के लिए कम से कम दो कमरे का मकान तो बना के मरूं, और दो कमरे का बना लेते तो ऐसा समझते कि हमने मोक्ष हो गया, नहीं तो वैसे ही मर जाते। क्यों? अब ब्रह्मचारी क्या हो गए 100 कमरों से कम में इनका काम नहीं चलता है। क्या हर जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए और आगे बढ़ जाते तो 2000 कमरे चाहिए, फाइव स्टार होटल चाहिए, होटल जैसे कमरे चाहिए। तुमको क्या, तुम तो नगमे से कम दशा में हो, तुमके लिए फाइव स्टार से क्या लेना देना? क्यों बोलो? अब मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? तो वो समझते हम इससे छूट गए, छूट गए कहाँ छूटे? और हम मोक्ष कहते हैं कि भाई हम क्या मोक्ष, मिथ्या से छूट जाते। लेकिन मिथ्या को जानते हो क्या है? हाँ वो जानता है। अभी दिनेश भाई से पूछेंगे तो फलाने कर्म की प्रकृति का उदय, फलाना आता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा है, वैसा है, ये बोलेंगे अन्ना जी, ये बोलेंगे। क्यों? और चरणा योग वालों से बोलेंगे गरीब मिथ्या दृष्टि पंचम अध्याय वाले, छठवें अध्याय वाले, सातवें अध्याय वाले। क्यों? तो हम चार चार अध्याय पढ़े। क्यों? लेकिन इसमें एक पंक्ति नहीं, आधी पंक्ति में बता दिया कि संसार क्या है। पर को करूं मैं यह अहम, अत्यंत ही दुर्वार है। ये संसार क्या लिखा मूल में? तो देखो ऊपर छंद पढ़ो, आ संसार है। कि कब से है ये अहम? कि अनादि संसार से है, संसार से अनादि काल का संसार है ना, तू तब से ये अहम है। तो इससे छूटना इतना सी बात है। देखो ये कितनी बड़ी चीज कितनी छोटी रह गई, हमने छोटी चीज को बहुत बड़ी बना दी है। इसके लिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि हमें मध्य प्रदेश में जो गेहूं है मान लीजिए वे 1000 रुपए क्विंटल है, और उत्तर प्रदेश में गेहूं है वो 800 रुपए क्विंटल है, समझे ना? क्या महाराष्ट्र में आपको महाराष्ट्र अच्छा लगता हो तो क्यों? अब हमको ये गेहूं महाराष्ट्र से हम मध्य प्रदेश में ले जाएं तो 200 रुपए क्विंटल का फायदा है, कितना बड़ा मुनाफा है बोलिए। तो अब गेहूं कहाँ है? क्या महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में, और मध्य प्रदेश में ले कहाँ जाना है? मध्य प्रदेश के भिंड जिले में, मुरैना भिंड में। कितना दूर है? 1500 किलोमीटर। हाय राम, जी ये 1500 किलोमीटर कैसे ले जाएंगे? कदम कदम पर पुलिस है, हर जगह चेकिंग है। क्यों? कितना बड़ा हमें कठिन काम लगता है, हैं? लेकिन ये काम कितना सरल है, क्योंकि महाराष्ट्र का गेहूं महाराष्ट्र में तो ले जा सकते हो क्या? नहीं, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है ना। तो महाराष्ट्र की बॉर्डर तक ले आओ, यहां पर नागपुर के वहां ले आओ, बिल्कुल वहां पर। क्यों? वहां तक कोई रोक नहीं है। और रायपुर में अथवा उधर भोपाल में, उधर मध्य प्रदेश लग गया है, तो वहां पर कितनी इंच की बॉर्डर कितनी है मालूम? आड़े बाल के बराबर। गणित में बोलते हैं रेखा किसे बोलते हैं? बोलो बेटा, बोलो बोलो। जिसमें लंबाई तो होती है और मोटाई नहीं होती। क्यों? तो रेखा तो उनके बीच में ऐसी है ना, उसमें मोटाई तो है ही नहीं, मान एक आड़े बाल के बराबर भी जमीन ऐसी नहीं है कि ना जो मध्य प्रदेश हो ना जो महाराष्ट्र हो, दोनों के बीच में नहीं है ना। तो समस्या तो आड़े बाल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वहां तक ले जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, और वहां से ले जाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं लिखा रहता है मध्य प्रदेश का गेहूं, ये यूपी का गेहूं, ये महाराष्ट्र का गेहूं है। क्यों? अब इतनी सी समस्या को तूने 1500 किलोमीटर की बना दी। क्यों? अब समस्या तो इतनी थी कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, और तू ये मान बैठा कि मुझे सारी दुनिया का माथा, मुझे बहुत काम है, बहुत काम है, सारे देश को संभालना है। क्यों? घर को संभालना है, समाज को संभालना है, ये जो तेरे दिमाग में पर के कर्तृत्व का जो अहंकार तेरे दिमाग में जम रहा है, ये इसको इतनी बड़ी समस्या लग रही है। और ये कहता है कि भाई तूने, तेरी कोई समस्या ही नहीं है, आरे बाल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि तू पर का करता ही नहीं है। कि आज तक तो मैंने इतना किया ना, अब मैं छोड़ दूं तो कल से कौन करेगा ना? कल से कौन करेगा, समझ नहीं ना? वो कहते पहले तूने आज तक कुछ किया ही नहीं है, जो तू कर रहा था, जो तू छोड़ देगा, जो तुझे वो करने की जरूरत है क्यों? तो इतनी सी दूर बात है कि तूने कुछ किया नहीं है, तू कर सकता नहीं है, तुझे करना नहीं है, तुझे छोड़ना नहीं है। छोड़ना तो वो जब करता हो तो राई की ओट में पहाड़ हो गया है, अब वो अत्यंत दुर्वार हो गया क्योंकि अनादि का है, बहुत ही मजबूत होगा अनादि का होगा तो, क्यों अनादि का है ना, लिखा है इसमें, क्यों अध्यात्म अनादि का है। अरे एक समय की पर्याय तो खत्म हो गई, तो एक समय की पर्याय का है, क्यों नवीन जी, एक समय की पर्याय का है ना, और इसको नाश करना, इसको तो करना पड़ेगा ना नाश, बोला अपने आप ही खत्म हो जाने वाली है, उसे अपने आप ही खत्म हो जाने वाली है, तुझे कुछ करना ही नहीं है। ये नहीं करने वाले धर्म को करने वाला बनाकर हमने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया है अपनी मान्यता में। मिथ्या सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, इन कर्ण योग वालों के चक्कर में मत पड़ना, अन्ना जी के चक्कर में आए और मरे, ये इतना इतना डरा देंगे तुम्हारे लिए कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे क्या है? कि नरक में इतने दुख भोगे, तेती तेती सागर तक इतने दुख भोगे क्यों? कोई वो क्या है ना, तीन लोग को अनाज जू खाए मिटना लहाए, क्यों ये तुम्हारी खजिया खड़ी कर देंगे क्यों? और हमारे पास आओगे तो हम कहेंगे निकल जाए ना, अभी काहे को जबरदस्ती नरक खड़ा कर दो, वो तो नफा लूट कहाँ का छूट गया, जो रास्ता पार करके आ गए अब उसके लिए काहे को रोते हो, भूतकाल को भूल जाओ ना क्यों? क्या लिखा देखो, पद को करूं मैं, ये इतना सा मिथ्यात्व है, इसका नाश करना है। अनादि का तो अपने आप ही नष्ट होता चला आ रहा, एक मिनट भी है, अभी जो वर्तमान में तेरी मान्यता है वो हैं, वो कौन सी विकृतियों में क्या विच्छुति होगी, क्या संक्रमण होगा, क्या होगा, बदलाबंदी होगी, फिर ऐसा जाएगी वो अनंतानंदी अप्रत्यक्षाना में बदलेगी, अप्रत्यक्षाना प्रत्यक्षाना में बदलेगी, बदले तेरी हमें क्या लेना देना, हमें क्या करना है उसमें, बोलिए क्यों? तू तो इतना कर कि ये मैं कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि नहीं करूंगा तो मैं मान सकता हूँ आपकी प्रतिज्ञा लेने तैयार हूँ, लेकिन आज तक जो करे वे तो भोगने पड़ेंगे ना, क्या कहता कि नहीं कहता, उनका क्या होगा? मैंने एक दिन कहा था, थोड़ा सा करना नियोग पढ़ाया था कि भैया ये सात कर्म तो वे क्या है, नपुंसक हैं, बाण हैं, ये इनकी संतति पैदा नहीं होती, ये आगामी बंध में निमित्त नहीं है, इनके उदय में जो भी आपको भोगी अवस्था, बस तुमने वह भोगी और खेल खत्म, आगे संतति नहीं चलती इनकी, अकेले मोह कर्म है, जिसके उदय में जो भाव होते हैं, दो ही भाव होते हैं क्यों, एक तो पर में एकत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व और बाकी क्रोधादि कसाय, बस ये बंद के निमित्त हैं, उनकी क्यों चिंता करता है? अब उसने इतना किया, हे भगवान इतने पाप किए, इतने पाप किए, शादी के पुणे न चोरी पर बनिता सुंदर गे जोरी, आरंभ परिग्रह भीने पने पापे जू यादे देखीने, है ना, आलोचना आलोचना है ना। वो कहते हैं कि तूने कुछ किया ही नहीं है तो भी इतने कर्म क्यों बंधे। आगे अभी एक कलश आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत वो कलश मुझे बहुत प्यारा है और मैं कई जगह सुनाता हूँ लोगों को, आपने भी शायद सुना होगा। उसमें ये आता है कि विकल्प कहा परम करता विकल्पा कर्म के विलम्ब। तो एक पंक्ति बहुत पर्याप्त है, ऐसे कैसे लिखवा लो कहीं भी। ये विकल्पक आत्मा करता है और विकल्प ही उसका कर्म है। ये भी अशुद्ध निश्चय से घबराना नहीं, लेकिन ये भी कितना मार्मिक है। क्या कहते हैं विकल्प, आत्मा को जानने के कारण ज्ञायक कहते हैं ना, देखने के कारण दर्शक कहते हैं कि नहीं, ऐसे ही विकल्प करने के कारण हमने उसका नाम रखा विकल्पक। कौन सा आत्मा? विकल्पक आत्मा, मैंने विकल्प करने वाला आत्मा नाम रखा है, बोलता वो भी इसी वजह से रखा है क्योंकि उसे विकल्प हो रहा है और वो विकल्प रूप परिणमित हुआ है। अभी अभी मैं पीछे कलश पढ़ूंगा या परिणमित दिशा करता वाला, उससे बात आएगी। विकल्प कर्म केवलम, उसका कर्म यदि है कदाचित, पूरी तरह तो मैं नहीं कहता हूं कि है ही, अज्ञानी के, ज्ञानी के भी विकल्प होता है लेकिन वो उसका कर्ता नहीं है, लेकिन वो विकल्प ही उसका कर्म है। जैसा विकल्प हुआ है विकल्प के अनुसार प्रणमन यदि कदाचित लोक में हो भी गया हो तो भी उस प्रणमन का कर्ता वो नहीं है। क्या समझे ना, जैसे हमने किसी को मारने का भाव किया, अब वो नहीं मरा तो वो क्रिया ही नहीं हुई तो उसका कर्ता होने का तो सवाल ही कहाँ है मेरा। लेकिन यदि वो मेरे मैंने विकल्प किया, कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत बड़ा होता है उनका वचन फलता है, यदि उनके मुंह से आशीर्वाद निकल जाए तो वो उसकी नैया पार हो जाती है और शराब निकल जाए तो बस। और हिंदू धर्म के ऋषि तो शराब ही शराब देने के लिए जितने कहानी किस्से हैं, और उन्होंने शराब दे दिया, शराब दे दिया, शराब दे दिया, क्यों कहते हैं ना, वो कहते हैं कि उसने विकल्प किया, शराब देने का किया था, आशीर्वाद देने का किया, लेकिन तेरा जो भला भरा हुआ है उसके विकल्प के कारण उसका विकलंच मात्र नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों के बीच में वज्र की दीवार है अत्यंत भाव की। तो क्या हुआ है कि विकल्प ही, वो कर्ता यदि है तो उस विकल्प का ही है, वो भी मिथ्यात्व सहित हो तो। मिथ्यात्व के बिना भी विकल्प भी होता है ज्ञानी के, लेकिन वो ज्ञानी उसके विकल्प का कर्ता नहीं है। आपको भला करने का आशीर्वाद ज्ञानी ने दिया, बुरा करने का तो देगा ही नहीं, कभी कभी गुस्से में दे भी जाए दे दे, क्यों, तो भी ना उस विकल्प के कारण कुछ तुम्हारा भला बुरा होता है और ज्ञानी उस विकल्प के कर्ता भी नहीं है। अब काय के, अब काय के, गुरुदेव तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारा प्रसाद तुम्हारे प्रसाद, काय का प्रसाद प्रसाद, कोई को गुरुदेव का प्रसाद प्रसाद नहीं होता। न्याय शास्त्र में लिखा है, कहा शांति जी लिखा क्या नहीं लिखा कि गुरु की प्रसाद तत्प्रसाद है ना, क्या संत बोलो, श्रेयो मार्ग से संसिद्धि प्रसादा परमेश्वरिना, पंच परमेश्वरी की प्रसाद से श्रेय मार्ग की सिद्धि होती है। ये आचार्य खुद लिखा, किन्ने आचार्य ने, विद्यानंद जी ने खुद ही गाथा लिखी और खुद ही अर्थ लिखा, सोपग टीका है। सोपग टीका का मतलब समझ लें, जो खुद ही आचार्य ने ग्रंथ लिखा और खुद ही टीका लिखी, ऐसे भी ग्रंथ है। आचार्य कुंड ने ग्रंथ लिखा और अमृतचंद ने टीका लिखी, लेकिन वो आप्त परीक्षा ऐसा ग्रंथ है कि विद्यानंद जी ने खुद आप्त परीक्षा ग्रंथ लिखा और फिर उसकी टीका भी खुद लिखी। दूसरा लिखा तो हम समझेंगे उनने तो ऐसा नहीं माना होगा, एक टीकाकार ने ठोक दिया। तो उन्होंने कहा तुम्हारे भगवान तो वितरागी है पंच परमेश्वर, और उनका तो प्रसाद प्रसाद होता ही नहीं है, और तुम कह रहे पंच परमेश्वर के प्रसाद से हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो शिष्य में के चित्त में जो पंच परमेश्वर की स्तुति करते वक्त जो प्रसन्नता हुई, ये प्रसन्नता ही उसको हम आचार्य का प्रसाद कहते हैं। प्रसाद मिल गया क्या अब ना गुरुदेव? हाँ गुरुदेव तुमने ये बताया, हमारा दिल खुश हुआ ना। तो एक गुरुदेव का प्रसाद है, गुरुदेव गुरुदेव कुछ नहीं देते, न दिया ना कभी दे सकते हैं, ना कोई किसी को दे ही ले नहीं सकता है। क्यों कहते ये समझाना बहुत कठिन है, अत्यंत ही दुर्वार है। कौन सा अज्ञान? अब अज्ञान की लंबी लंबी परिभाषाएं शास्त्रों में बहुत लिखी मिल जाएंगी, लेकिन वो मैं एक पंक्ति में कहता हूं कि पर को करूं मैं, मूल कलश में है देखना, अत्यंत ही दुर्वार है यह है अखंड अनादि। तो कौन भैया अखंड अनादि कौन? अरे वो तो हमारा भगवान आत्मा है, जब भी अखंड अनादि की बात चले तो भगवान आत्मा की बात आती है बाबू भाई। मैं अखंड अनादि क्यों? वो आत्मा की आत्मा फात्मा की बात नहीं है यहाँ। क्यों किसकी बात है? किसकी बात है? उस विकल्प की। मैं पर का करूं मैं, यद्यपि वो एक समय का है लेकिन परंपरा की दृष्टि से अनादि का है, समझे ना। और अनादि से आज तक एक समय भी उसका खंडित नहीं हुआ, माने ऐसा विकल्प हुए बिना एक समय भी नहीं गया। क्या इसका नाम है अखंड अनादि? क्यों सच बोलो, अखंड अनादि का नाम सुनते हमें भगवान आत्मा दिखने लगता है? ये मिथ्या अखंड अनादि है, माने ये अनादि मिथ्या दृष्टि की बात है। क्यों गुरुदेव ऐसे कहेंगे? आई अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं बात है, बस इसने पकड़ ली अनादि की बात है। अब अगली ही पंक्ति में फिर वह शादी की बात आ जाएगी, लेकिन इसकी तो अनादि की चलती ही रहेगी, जब तक कहीं तक चलते ही चलते झगड़ेगा फिर कि अनादि की है कि शादी की है। अरे दोनों शादी की भी है, अनादि की भी है, सबकी है। क्यों क्यों सब समझ गया ना? अरे इसमें ये झगड़ा वैसा ही है ना कि प्रतिज्ञा किसको दी है रात्रि भोजन नहीं करने की, क्यों खाना पानी पीने की, सबसे बड़े मूर्ख को समझ लो आप, वो प्रथम परीक्षा वाला क्या कहना चाहता है। ऐसा विकल्प करना कि हमारे लिए नहीं है ये ग्रस्त, हम इतने धीर हो गए हैं। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ, आपको सुना कभी कि लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ जंगल में गए थे, तो रामचंद्र जी और सीता जी तो जंगल में रहते थे कुटिया बना करके आराम से, बेचारे खाने पीने की सब व्यवस्था तो लक्ष्मण को करनी पड़ती थी, क्योंकि पीड़ी भिस्ती खैर गई थे सब, अब वहां नौका चाकर तो साथ में कोई थे नहीं, सारी व्यवस्था मजाक नहीं कर रहे सच्ची बात है, पढ़ना पदम पुराण, सारी व्यवस्था वही करते थे। तो हर नगर में जाते गांव में जाते थे जगह जगह जगह, और वहां उपद्रवी थे तो बस जहां झगड़ा हो जाता था, और झगड़ा हो जाता था झगड़ झगड़ू में एक आध शादी करके आ जाते थे, उन्हें सैकड़ों शादियां कर रस्ते में पढ़ना पड़ा कि नहीं पड़ा। तो हमारे लिए तो हे हो गया ना पदम पुराण, कैसे पढ़ेगा, हमारे विद्यार्थी तो पढ़ते हैं बेटा, वहां आओगे तो पढ़ना पड़ेगा। क्या फिर क्या हुआ वहां मालूम? क्या हुआ कि वो गए नगर में, तो नगर में मालूम पड़ा कि रानी की राजा की लड़की है, और उसकी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे से जीतेगा कहने उसे मैं शादी करूंगी, और नहीं जीत पाएगा हार गया तो जिंदगी भर को जेल में डाल दूंगा। क्यों ऐसा? इसमें जब भी पहुंच गए राज दरबार में, वनवासी आदिवासी जैसे लगते थे, वैसे कपड़े पहने थे, वैसे ही थे ना, कौन जानता था कि राजकुमार है कौन है। वहां पहुंच गए तो वे कौन आ गया कौन आ गया, हटाओ हटाओ हटाओ, जब लोग दौड़े भगाओ निकालने को बाहर को, अकड़ के खड़े नहीं नहीं निकलते जाओ जिसमें दिखे जो कर लो, लड़ने झगड़ने को तैयार हो गए। लड़ने झगड़ने को तैयार हो गए तो सामने वालों ने तीर चलाए, राज दरबार में जो सुरक्षा गार्ड थे ना तो मालूम क्या किया हमने कि वो तीर चलाए तो एक हाथ से पकड़ लिया, फिर दूसरा तीर चलाया तो इस हाथ से पकड़ लिया, तीसरा तीर चलाया तो ऐसा पकड़ लिया, चौथा तीर आया तो ऐसा पकड़ लिया, पांचवा तीर आया तो ऐसा पकड़ लिया, छठवा तीर आया तो ऐसा पकड़ लिया, सब पैरों से पकड़ लिए, फिर ऐसे पकड़ लिए, अब सब भर गए तीर पकड़े, फिर अंतिम तीर से आया ऐसा मुंह खोल दिया और मुंह में तीर लिया ऐसा और दांत से पकड़े, अंदर नहीं भरता वहां इतनी देर तक तो आने दिया कहां तक कि जब तक वो यहां तक आ जाए और फिर दांतों से दबोच दिया आगे नहीं बढ़ पाया, कुछ ने आक्रमण नहीं किया, इतने नहीं तो सबके होश गायब हो गए, ये है कौन क्या? उसने अपनी वीरता तो नहीं दिखाई, वीरता तो आक्रमण करने में होती है, उसने अपना धैर्य दिखाई, आक्रमण सहने की ताकत दिखाई, महाराज राजा की लड़की ने फटाफट बम मारा डाल दी, तो जिना एक झंझट ले लेके आ जाते थे मोल करके, अपने क्या पे कहना चल रहा था, अत्यंत ही दुर्वार है ना, क्या समझे, तो वो लक्ष्मण की जो घटना है कि धैर्य धीरता एक गुण है सबसे बड़ा, क्योंकि सहने की ताकत, गालियां देने की ताकत ताकत नहीं है, उन गालियों को सहने की ताकत ताकत है, कहां लिखा बोलो अभिनंदन जी, सहे बान वर्षा भजबू है मुनि लोग जो हैं, क्यों ये सारे बार दुष्टों के सहन कर जाते हैं ना उस सरकर में, तब वे वीर कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं, भगवान महावीर कैसे वीर हैं, उन्हें किसे मारा था, लेकिन सारे उपसर्गों को सहन किया तो हम उन्हें महावीर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये धीरता है तो सबसे बड़ी वीरता है, तो पहले तो हमारा लक्ष्य केंद्रित होने चाहिए कि क्या करना है हमें, हमें और ना तो कर्मों का नाश करना है, ना हमें पड़ोसी का नाश करना है, ना हमें पाकिस्तान वालों का नाश करना है, हमको तो यदि हमारा शत्रु है तो वो क्या है, हमारी वो एक समय की मान्यता जो अनादि से चली आ रही अखंड रूप से हर समय नई नई, वो अत्यंत ही दुर्वार है, माने उस पर कितने ही आप बार करो तो लक्ष्मण जैसी धीर है, सब बल्ला कुछ नहीं, क्यों कितने कितने ज्ञानियों ने बार किए, एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, और अपने को गुरुदेव की 45-45 वर्ष तक सुने ये बात है कि नहीं है, तो अब सोचो कि हमारे कर्तृत्व में कितना ढीलापन आया है, इतनी बात बता दो, ढीलापन भी आया हो तो बताओ, मैंने देश का किया, समाज का किया, घर का किया, इसका किया, इसका और करना बाकी है, ये काम खत्म ही नहीं होते हैं, वो कहते तूने आज तक कुछ नहीं किया और भविष्य में तेरा कुछ भी करना बाकी नहीं है, पर में समझना कि अपने में तो करना पड़ेगा ना, नरेंद्र जी बोलो कहा था, अपना तो करना पड़ेगा था, हम तो सिर्फ अपना ही करते हैं, हम तो पर का करते ही नहीं है, पानी भी भर के लाते हैं ना तो अपने हाथ से भर के लाते बुरा नहीं है ना अपना तो करना पड़ेगा ना, अरे ये अपना नहीं है, ये तो देह का है, तो देह अपनी नहीं है, ये तो देह तो अपनी जेल है, ये तो अपनी शत्रु है क्यों है? तो राग तो करना ही पड़ेगा ना, धर्मानुराग तो, अरे कहते हैं ज्ञान तेरा कार्य है कि वो तो करना पड़ेगा ना, इतना तो रखो, वो इतना तो रखो, तो वो कहते करना क्या पड़ा है, वो तो होता है प्रति समय, तू चाहे कि ज्ञान नहीं हो ये संभव नहीं है, कि किसका होता है, कि जिसका जानने का उसका स्वभाव है उसका होता है, यानी वो स्वभाव के विरुद्ध नहीं है, जिसको भी जानने आता है अनादि से प्रति समय किसे उस ज्ञान की बजाय में गे नक्की है, तुझे करना क्या है, लेकिन इसको करने की भाषा के बिना समझ में ही नहीं आता, तो कहते हैं कि हाँ अपने आत्मा को जानना पड़ेगा। पहले तो ये जानने को काम ही नहीं मानता है ना, जबकि भाई साहब टू डू ये वर्ब है ना, तो टू नो ये वर्ब है कि नहीं, करना जैसे क्रिया है तो जानना क्रिया है कि नहीं। इस जगह तो पूरे जानने से काम हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, पूरे जानने से हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। ये जानने के कोरे कोरे और धुले धुला ये दो भेद कहां से आए, मुझे समझ में नहीं आ गई। जानना भी कोरा होता है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अरे जानना ही करना पड़ेगा और इसके अलावा कुछ नहीं करना, करता ही नहीं है जानना। इस जगत में भी जानना ही सबसे बड़ा काम है और मुक्ति के मार्ग में तो एकमात्र जानना काम है। जगत में कैसे है, तो एक मकान बन रहा, एक मकान बन रहा ना, अब उस मकान में 100 मजदूर काम कर रहे हैं, अब 100 मजदूरों पर 10-10 मजदूर पर एक एक आदमी रखा देखने के लिए कि ये ढंग से काम करते हैं कि नहीं, कुछ जमीन खोद रहे हैं, कुछ ईंटें ला रहे हैं, तो उसको देखने वाला अलग, उसको एक एक पर 10 आदमी रखे, तो 10 आदमी देखने जानने वाले, एक 100 करने वाले, अब एक और ओवरसियर रखा ऊपर सबसे कि वो 10 आदमी कौन जो उन्हें देख रहे, वे देखने जानने का काम ढंग से कर रहे कि नहीं कर रहे, ये देखने जानने के लिए रखे कर नहीं रखा क्यों, और मालिक अथवा वो ठेकेदार कॉन्ट्रेक्टर वो उन सब को उसको देखता, उससे पूछता है क्यों ठीक चल रहा ना काम, अपना जितना उद्देश्य है कि एक महीना में पूरा हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, कहां साफ हो जाएगा, इसका मतलब 1/30 आज हो गया है ना, क्यों वो काम कौन करता है, मालिक एयर कंडीशन में बैठे बैठे, वहां जाते ही नहीं है देखने। अब देखिए जो मजदूर जिसे अब काम करने वाला बोलते हो उसे मिलते हैं 200 रुपया रोज, मैं तो अपने अंदाज से बोलता हूँ, मुझे आज का रेट मालूम नहीं है, 200 रुपया रोज उसे मिलते हैं, फिर तो उन्हें जो देखने वाले भी जो खड़े हैं ना उन्हें 500 रुपया रोज, 15,000 रुपये महीना तो मिलता होगा ना उन्हें, क्यों उन्हें 500 रुपया रोज, अब जो करने वाले को 200 और उन्हें जानने वाले को देखने जानने वाले को 500 की क्या की कीमत हो जाता, जानने की कीमत ज्यादा है कि करने की, फिर उन जानने वालों को जानने वाले को कितने 1,000 रुपया रोज, क्यों और वो जो मालिक है उसे कितने मिलते हैं, उसको तो अनलिमिटेड, कितना बचेगा ये अभी बता सकता है, लिमिट बताए उसकी कोई, क्यों उसे तो अनलिमिटेड मिलते हैं ना। तो देखो पर का करने वाले को मजदूरी, उस पर को जानने वाले को 500 रुपया, समझ गए ना, और जानने वाला जो आत्मा है उसको जानने वाले को अनलिमिटेड माने अनंत सुख मिलता है। अब उस जानने वाले काम को तुमने काम ही नहीं किया, हम क्या करें, यदि हम सच बोलो ये कहें कि तुमको धर्म करना है तो क्या करना है, कि ये बस ये जानना है कि आज तक हमने आपने कुछ किया ही नहीं है क्या, क्योंकि भविष्य में कुछ नहीं करना ये भी बात पक्की है, लेकिन भविष्य की कोई दहशत नहीं है, तो तुम तो इतना मान लो कि आज तक हमने कुछ नहीं किया है, क्यों तुमने जी ठीक है भविष्य कुछ नहीं, अरे जब तुमने जितना जो जिसको तुमने करता माना उसे मान लिया कि हमने कुछ नहीं किया है, इसी आधार पर तो माना कि क्योंकि एक दूसरे करता ही नहीं है, तो अब वही तो करने का तुम्हारे माथे पे काम था, अब क्या कर, अब करने को क्या रह गया। लेकिन ऐसी हालत होती है कि एकदम ऐसी छत थी यहाँ पर, अब मुझे ऐसा भ्रम हुआ अंदर से कि ये छत गिरने वाली है, तो मैं खड़ा होकर के ऐसा हाथ लगा लिया, अब नीचे 10-20 आदमी सो रहे थे, अब मैं कहता हूँ मैंने हाथ करा के छत को रोक लिया है, यदि मैंने हाथ हटाया तो छत गिरेगी, इतने लोग मर जाएंगे, बोलो अब मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ छत को रोके खड़ा हूं। अब लोग कहें कि भैया तू हाथ हटाया क्यों कर रहा है, कि हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, कि हटा लेना, हटा नहीं सकता, कोई दूसरा हाथ लगाए और रोके तो मैं हटाऊ, लेकिन भाई तूने रोका ही नहीं है, तेरे हाथ से रुका ही नहीं है, दूसरे को रोकने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा खतरा मैं नहीं सुन ले सकता। कौन है ऐसा अज्ञानी? हम तो ऐसा कोई नहीं देखा है। इंदिरा गांधी से लेके जैसे सब है, उससे इंदिरा गांधी से पूछा था कि आप यदि ऐसा होगा तो आप क्या करेंगी, छोड़ देंगी देश को? मैं इस देश को मझधार में कैसे छोड़ सकती हूँ? क्यों? आखिर मैंने 17 साल से संभाल के रखा है, उसके पहले मेरे बाप ने संभाला था। क्यों ऐसे मैं मझधार में कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे किसी ने नहीं संभाला, कोई के संभालने से कुछ समझता नहीं है। क्यों? तो वो ये कहते हैं कि वो आदमी का बोलिए, जब तक उसे भरोसा नहीं हो जाए एक छत मेरे हाथ पर नहीं टिकी है, तो वो हाथ नहीं हटा सकता। और उसका अनंत दुख, जो हाथ ऐसे लगाने से दुख होता है ना, वो कभी दूर नहीं हो सकता, है ना? अब उसका उपाय कितना छोटा सा है, सिर्फ इतना जानना है कि मेरे हाथ लगाने से एक छत एक सेकंड भी रुकी नहीं है, बस इतना। तो भविष्य में अब तो अपने आप हट जाएगा, तो भविष्य की बात क्या करना। एक दल पर का करूं मैं, यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है, यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुस्वार है। ये जीना मुश्किल हो गया, बहुत काम है मेरे को, सुबह से न रात में नींद आती है न सुबह ये होता है, ये करना ये करना ये करना। क्यों? कितने विकल्पों से ये मरता है, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जीवन हुआ दुस्वार है। क्यों? आप सब लोग यहाँ आ गए 8-10 दिन से, और 8-10 दिन रहोगे तो तब तक तुम अपने गांव में जो भी करते थे, अपने घर का जो भी करते थे, वो सब साफ हो गया होगा। क्यों? कि सब वैसे चलता होगा कि तुम जाओगे तो सब लोग कहेंगे पापा आप चले गए थे, हमें कितनी तकलीफ हुई, ये हुआ हुए, ये कोई कहने वाला है? जाके कहना, पूछना, नहीं नहीं पापा आप चिंता मत करो, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप तो एक महीना और रहते, वहां जाना, जाओ डॉक्टर साहब भारत के साथ चले जाओ, अमेरिका चले जाओ ना उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, सब यही कहने वाले हैं। लेकिन सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यह है कि हमें ये सुनना पसंद नहीं है। हमें ये सुनना पसंद है कि पापा बहुत तकलीफ हुई, आप चले गए, हम तो रोजीना याद करते थे, ख्याल में है ना? मैं एक आदमी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे कई आदमी हैं कि भैया मैं 20 दिन आए हो गए, बच्चों का एक फोन नहीं आया। कि आज तो हमने उसमें बात करते देखा था, जहां पर झक मार के मैं ही नहीं लगाया, तो अब तो बात होगी ना, उदास क्यों हो? किसी ने ये नहीं कहा कि कब आओगे, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा तो उनने कहा कि नहीं नहीं आप तो आराम से रहो, जब तक दादा कहें ये कहीं ना ये रोग ना जितना रहना हो रहा। तो ऐसा मुरझा गया कि मैं तो जैसे खत्म ही हो गया, अब मेरे घर वालों को मेरी जरूरत नहीं। अरे मैंने उनके बेटों से दादा जाती पोतों से कहा कि तुम बेवकूफ हो, ऐसा नहीं कहो, ये नहीं सुनना है उन्हें, ये कहो कि नहीं आप चले गए तो बहुत तकलीफ हुई, और कब आएंगे, वो हम लेने आ जाए, तुम आ जाओ, कब आओगे, ये आओगे वो आओगे। लेकिन अभी तो मैं नहीं आऊंगा, अभी तो मुझे यहाँ मन रहा धर्म लाभ रहा, नहीं नहीं साहब नहीं आना है, और फिर आपकी मर्जी है तो हम जो भी है, लेकिन आप ये सुनना है उन्हें, ये सुनना है सब बुड्ढों को, सब बोलता हूँ, अपने अपने मन को झांक के देख लेना है, आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये किसी को नहीं सुनना है। क्यों? यदि मेरे को अभी तबीयत खराब हो जाए और 8 दिन के लिए मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊं, क्यों? फिर 8 दिन बाद आऊं तो मुझे आप लोग मुझे ये नहीं सुनना है, दादा आप गए तो मैं आ गया, सब काम बहुत बढ़िया चला, कोई तकलीफ नहीं हुई, इतना बढ़िया सिविल चला, ये नहीं सुनना है, ये सुनना है कि सब सुना हो गया था, इस मूर्खानंद को क्या सुनना है। ये नहीं होते तो क्या होता है, ये सुनना है। क्यों? बोलो सच्ची बात हो ना, हर एक को इसके लिए वो लिखते हैं पर का करूं मैं, यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है, यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुस्वार है। अब भूतार्थ नए के ग्रहण से यदि पिलय को यह प्राप्त हो, तरकीब भी बता दी, एक कलश में सब कुछ आ गया, ये पिलय, इसका पिलय चाहिए, काय का पिलय चाहिए, बोलो बेटा, पर का करूं मैं, इस मान्यता का पिलय चाहिए, क्या इसका प्रलय, इस मान्यता का, तो वो कैसे होगा, भूतार्थ नए के परिग्रहण से, तुम निश्चय नए है उसको ग्रहण कर, उसमें ये लिखा है कि तूने आज तक किया ही नहीं, क्यों, उससे यदि एक बार है प्रलय को प्राप्त हो, यदि एक बार हम विधेयक ऊपर लिखा दो ना गाथा कि कल से हम आसंसारत एव धावति परम कुर्वे अम उच्च कई दुर्वारम ननु मोह नाम महा हंकार रूपोतमा, महान अहंकार रूपक अंधकार, ऐसा महान अहंकार है, मैंने किया, हूं करूं, ये अज्ञानता देखा क्या नहीं है, तद भूतार्थ परिग्रहेण विलयम एक बार अम्बृजेत, भूतार्थ नहीं के परिग्रह से यदि एक बार ये प्रलय को प्राप्त हो जाए, इसका प्रलय करना है, तत्किम ज्ञान घनस्य बंधन महो भूयो भवेद आत्मना, फिर ज्ञान के घन पिंड आत्मा को बंद कैसे होगा, देखो ना, तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंद हो, ये बंद के निरोध की ये विधि है, कितनी सरल है, कितनी सहज है, इसकी कठिनता तो अनादि से है और आज तक नहीं हुई, 35 साल गुरुदेव के व्याख्यान सुने, हजारों पेज पढ़े लिखे और आज तक भी ये कर्तृत्व का रस जरा भी फीका नहीं पड़ता, इसलिए इसको बहुत ताकतवर कहते हैं, क्या इसकी और कोई ताकत नहीं है, ये ताकत तेरे ही अंदर विद्यमान है, और इसमें करने के लिए दूसरे के सहयोग की क्या जरूरत है, बोलो चलो, तो कितने उपवास करने पड़ेंगे, कई मान्यता हटेगी, समय आज का हो गया है, बाकी बात में कल करना।